भागवतम सातवां स्कंद अध्याय संख्या 5 अध्याय का नाम है हिरण्यकश्यप का सार। पहला श्लोक संख्या 12। सायदं सायदान न उतापंसा अशोर बुद्धि विद्विधि दियते अन्य एषा तथा अहम इति एकदास्यति सायदानुवृता पुंसा पशुर्बुद्धिर्विद्यते अन्य एषा तथा अहम इति एकदास्यति। श्रील प्रभुपाद की सह मैं भगवान यदा जब अनुगत अनुकूल या प्रसन्न पुंसाम पद चिन्हों का पशु बुद्धि जीवन के विषय में पार्श्विक धारणा है कि मैं भगवान हूँ और हर एक ईश्वर है। विद्यते नष्ट हो जाता है अन्यः दूसरा एषः यह तथा भी अन्यः दूसरा अहम् मैं इति इस प्रकार भेद अंतर गता से युक्त अस्ति कष्टपूर्ण संकटपूर्ण। अनुवाद जो जब भगवान किसी जीव से उसकी भक्ति के कारण प्रसन्न हो जाते हैं तो वह पंडित बन जाता है और वह शत्रु मित्र तथा अपने में कोई भेद नहीं मानता। तब वह बुद्धिमानी से सोचता है कि हम सभी ईश्वर के लिए दास हैं और अतएव हम एक दूसरे से भिन्न नहीं हैं। तात्पर्य बहुत लंबा है, 5 पैराग्राफ से 2 पेज हैं, तो आप सबको अच्छी सहना मेंटेन करनी है, जागृत अवस्था में रहना है। बहुत अच्छा विशेष तात्पर्य है, इसके बाद मैं आप सबको इस लोगों का पूछूंगा इसमें से प्रश्न, ठीक है। और आप पहले बता दें कि इस तात्पर्य में मुख्यतः प्रभुपाद जी 3 विषय चर्चा करेंगे। एक तो आसुरी प्रवृत्ति कि असुर लोग कैसे सोचते हैं, दूसरा वैष्णव लोग कैसे सोचते हैं, तीसरा पशु बुद्धि जो श्लोक में आया है, और चौथा कि हम आसुरी प्रवृत्ति से वैष्णव प्रवृत्ति तरफ कैसे जा सकते हैं, ठीक है। 4 विषय हैं इस पूरे उन्हीं 4 को हम अपने चर्चा में चर्चा करेंगे इसके ऊपर। तो इसी प्रभुपाद के तात्पर्य बेस्ट होगा, लेकिन जैसे जैसे पढ़ते हैं ध्यान पूर्वक सुनिए, फिर बीच में आपसे पूछेंगे। ओके, जब प्रहलाद महाराज के अध्यापकों तथा पिता ने पूछा कि उसकी बुद्धि किस तरह दूषित हो गई है, तो प्रहलाद महाराज ने कहा, जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मेरी बुद्धि दूषित नहीं की गई है, परंतु अपने गुरु की कृपा से तथा भगवान कृष्ण की कृपा से मैंने ये सीखा है कि ना तो कोई मेरा मित्र है ना कोई शत्रु है। वास्तव में हम सब कृष्ण के नित्य दास हैं, किंतु माया के प्रभाव से हम सोचते हैं कि हम एक दूसरे के शत्रु तथा मित्र रूप में भगवान से भिन्न स्थित हैं। अब यह भ्रम दूर हो गया है, अतः मैं सामान्य मनुष्यों की तरह नहीं रहा। अब मैं यह नहीं सोचता कि मैं ईश्वर हूँ और अन्य लोग मेरे शत्रु तथा मित्र हैं। अब मैं ठीक ही सोचता हूँ कि हर कोई ईश्वर का नित्य दास है और हमारा कर्तव्य है कि इन परम प्रभु की सेवा की जाए, क्योंकि तभी हम दास के रूप में एकत्व के पद पर खड़े होंगे। असुरगण प्रत्येक व्यक्ति को मित्र या शत्रु मानते हैं, लेकिन वैष्णव का कहना है कि चूंकि प्रत्येक व्यक्ति भगवान का दास है, अतः प्रत्येक व्यक्ति एक जैसे पद पर है। अतः एक वैष्णव अन्य जीवों को ना तो शत्रु मानता है ना मित्र, अपितु हर एक को यह शिक्षा देता है कि हम सभी भगवान के दास के रूप में एक हैं। किंतु हम राष्ट्रों जातियों और शत्रु मित्रों के वर्गों को जन्म देकर अपना जीवन व्यर्थ गंवा रहे हैं। इस तरह वह कृष्ण भावना को ही फैलाने का प्रयास करता है। प्रत्येक व्यक्ति को कृष्णा भावानित पद प्राप्त करके भगवान के दास रूप में एकत्व का अनुभव करना चाहिए। यद्यपि जीव की 84 लाख योनियां हैं, किंतु एक वैष्णव उनमें इस एकत्व का अनुभव करता है। उपनिषद का उपदेश है एकत्व अनुपश्यता। भक्तों चाहिए कि भगवान को प्रत्येक प्राणी के हृदय में स्थित देखे और यह भी देखे कि प्रत्येक जीव भगवान के नित्य दास के रूप में है। यह दृष्टि एकत्व कहलाती है। यद्यपि दास तथा स्वामी का संबंध रहता है, किंतु दास तथा स्वामी अपने आध्यात्मिक सत्ता के कारण एक हैं, यह भी एकत्व है। अथवा अतः वैष्णव के एकत्व की धारणा मायावादी से भिन्न है। तो ये दो पैराग्राफ हो गए। इसमें एक तो बताया प्रहलाद महाराज ने अपने विचार व्यक्त किए और दूसरे ने प्रभुपाद ने बताया कि असुरगण कैसे सोचते हैं, एक दूसरे को मित्र शत्रु के रूप में देखते हैं, और वैष्णवगण कैसे सोचते हैं कि सबको भगवान के दास के रूप में देखते हैं। अब आगे और बताया जाए कि वैष्णव कैसे सोचते हैं। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद महाराज से पूछा कि वह अपने परिवार से विपरीत क्यों है। जब किसी परिवार का कोई सदस्य किसी शत्रु द्वारा मारा जाता है तो उस परिवार के सारे सदस्य उस हत्यारे के शत्रु बन जाते हैं। लेकिन हिरण्यकश्यप को देख रहा था कि प्रहलाद को तो हत्यारे से मैत्रीभाव था, अतः उसने पूछा, किसने तुम्हें इस तरह की बुद्धि उत्पन्न की है? क्या तुमने स्वयं में चेतना विकसित की है? क्योंकि तुम छोटे से बालक हो, अतः किसी ने अवश्य ही तुम्हें इस तरह सोचने के लिए प्रेरित किया है। प्रहलाद महाराज कहना चाहते थे कि विष्णु के अनुकूल मनोवृत्ति तभी विकसित हो सकती है जब भगवान अनुकूल हो। जो श्लोक में आता है, विष्णु के अनुकूल मनोवृत्ति तभी विकसित हो सकती है जब भगवान अनुकूल हो। जैसे कि भगवत गीता में कहा गया है, कृष्ण सबो के मित्र है, भगवान कभी भी लाखों जीवों में से किसी के भी शत्रु नहीं होते, वे तो सदा सबों के मित्र है। यही अष्टमी ज्ञान है। यदि कोई सोचता है कि भगवान शत्रु है तो उसकी बुद्धि पशु बुद्धि है। तो पशु बुद्धि को क्या बता रहे हैं? जो भगवान को शत्रु मानते हैं। तो झूठी सोचते हैं कि मैंने अपने शत्रु से भिन्न हूँ और मेरा शत्रु मुझसे भिन्न है। चूंकि शत्रु ने ऐसा किया है, अतः मेरा कर्तव्य है कि मैं उसका वध करूं। इस भ्रांत धारणा को इस श्लोक में भेद कथा सदी के रूप में वर्णित किया गया है। वास्तविकता तो यह है कि प्रत्येक व्यक्ति भगवान का दास है। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु ने चैतन्य चैतन्य पुष्टि की है, जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। ईश्वर के दास रूप में हम सभी एक है और शत्रु का मित्र का प्रश्न ही नहीं उठता। यदि मनुष्य वास्तव में यह समझ ले कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति भगवान का दास है, तो फिर शत्रु या मित्र का प्रश्न कहाँ उठता है? आपत्ति पैराग्राफ। भगवान की सेवा करने के लिए सबों को मैत्री भाव रखना चाहिए। हर एक को चाहिए कि दूसरों द्वारा की गई भगवान की सेवा की प्रशंसा करे और अपने ही सेवा पर गर्वित ना हो। यही वैष्णवों के सोचने की विधि या वैकुंठ विचार है। ध्यान पूर्वक सुना सकते हैं? हाँ जी, बहुत महत्वपूर्ण बात है। सेवा करने के लिए दासों से स्पृदा हो सकती है, होड़ लग सकती है, किंतु वैकुंठ लोक में तो दूसरे दास की सेवा प्रशंसित होती है, निंदित नहीं। यह वैकुंठ की स्पृदा है। यहाँ पर दासों के मध्य शत्रुता का प्रश्न नहीं उठता। प्रत्येक व्यक्ति को पूरे सामर्थ्य भर सेवा करने देना चाहिए और हरेक को चाहिए कि दूसरे द्वारा की जाने वाली सेवा को समझे। वैकुंठ के कार्यकलाप ऐसे ही है। चूंकि हर व्यक्ति दास है, अतएव हर एक समान स्तर पद पर होता है और उसे अपने भक्ति के अनुसार भगवान की सेवा करने दी जाती है। जैसे कि भगवत गीता 15:15 में पुष्ट होता है, सर्वस्य चाहा मृदि सर्व विष्णु मदा स्मृति ज्ञान मोहन च। भगवान सर्वों के हृदय में स्थित हैं और दास की मनोवृत्ति के अनुसार आदेश देने रहते हैं, किंतु भगवान भक्तों तथा भक्तों को भिन्न भिन्न आदेश देते हैं। अभक्तपन परमेश्वर की सत्ता को चुनौती देते हैं, अतः भगवान ऐसा आदेश देते हैं कि जिससे अभक्त जन्म जन्मांतर भगवान की सेवा को भूलता रहता है और प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित होता है। किंतु जब भक्त अत्यंत निष्ठापूर्वक भगवान की सेवा करना चाहता है तो भगवान भिन्न रीति से आदेश देते हैं। जैसे कि भगवत गीता 10:10 में भगवान कहते हैं, तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं तदामि बुद्धि योगं तं येन माम उपयन्ति ते। जो निरंतर मेरी भक्ति करते रहते हैं और प्रेम पूर्वक मेरी पूजा करते हैं, उन्हें मैं बुद्धि देता हूँ जिससे वे मेरे पास आ सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति वास्तव में दास है, ना तो शत्रु है ना मित्र, और हर व्यक्ति भगवान के पृथक पृथक आदेशानुसार कार्य कर रहा है, क्योंकि वे प्रत्येक जीव को उसकी मानसिकता के अनुसार निर्देश देते हैं। हरे कृष्ण। तो बहुत ही पावरफुल मैसेज है और मैं अपने आप को जुड़ लगे के बारे में इस मैसेज को दोहराने के लिए, लेकिन यथासंभव होगा कहेंगे। और कृपया करके पहले से आपको स्पष्ट कर दें, जो हम इस प्रवचन बोलेंगे ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि हम आपको प्रवचन दे रहे हैं। जो हमें अपनी कमियां महसूस होंगी वो बोलेंगे, तो आपकी कमियां नहीं बताई जाएंगी, अपनी कमी बताऊंगा। तो ये बहुत ही रोचक और बहुत ही शिक्षा पर प्रसंग है। पहला हमारा छोटे बच्चे हैं, छह नंबर के स्कूल से आते हैं। हिरण्यकश्यप बड़े प्रेम और मुझसे पूछते हैं, बताओ स्कूल में क्या सीखा। हिरण्यकश्यप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो बोलेगा हिरण्यकश्यप इज गॉड, हिरण्यकश्यप इज गॉड। जैसे हम बच्चे को मम्मी पापा पूछते हैं बेटे क्या सीखा, तो बोलते हैं बाबा ब्लैक शीप है। तो महाराज कितने प्रसन्न होते हैं, कोई भी कैसे चाहते बड़े 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 को कहाँ सुनाओ, जल्दी सुनाओ, कविता सुनाओ, या नया गाना सीखा सुनाओ, तो सारे पूरा परिवार खुश हो जाता है कि बच्चा कुछ सीख के आया अपने स्कूल से। इसी ढंग से अब शांतल के स्कूल में गए और उन्होंने बोला बच्चे को सुनाओ, उसको चूंगा, उसके सर को सुनगा, बोले क्या सीखा है, बोला तत्साथ सुबरना सदा सुबह कि पिताजी आप जिस घर में रह रहे हैं ये अंधा कुआं है, भाग के जाओ और श्री हरि की शरण लो वृंदावन में। तो हिरण्यकश्यप को ऐसा लगा, हंसी आ गई हिरण्यकश्यप से, हम सबको हंसी आ रही है। छोटा बच्चा ऐसी बात कर रहा है, कहीं ड्रामे में देखा होगा या टीवी में सुन लिया होगा, ऐसे दोहरा रहा है। तो हिरण्यकश्यप को विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा क्यों बोल रहा है, हंस पड़ा। चंद नंबर को बुलाया, थोड़ा देखो उसको ध्यान दो, अच्छी बातें सिखाओ, कुछ हो रहा है तो कुछ सिखाने आ रहा है, अपने आप में इतनी बुद्धि हो ही नहीं सकती, इतनी बड़ी बातें बोले, संन्यास की बातें बोले कि घर छोड़ के जाओ, मेरे को आदेश दे रहे हैं, कहीं ऐसे उल्टा सीधा सुन लिया होगा बोल रहा है। देखो कौन उल्टा सीधी बातें कर रहा है स्कूल में, आपके स्कूल में ऐसा कौन आ सकता है, जाकर देखो। शरण हम रहा उनको बड़े फहला के फुसला के पूछते हैं किसने आपको ये सिखाया, वो सब किया, फिर दोबारा से जब तैयार करके जब वो ऐसा बातचीत कर रहे होते हैं तो प्रहलाद महाराज उनको उत्तर देते हैं। क्योंकि शरण और अमृत को हिरण्यकश्यप ने आदेश दिया कि इसको सिखाओ हमारा कौन मित्र है कौन शत्रु है, ये बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान है। विष्णु ने हमारे भाई का वध किया है तो उसको मालूम होना चाहिए कौन मित्र है कौन शत्रु है, इसी पे सारा हमारा आसुरी साम्राज्य निर्भर है। तो उन्होंने समझाया उसको, प्रहलाद महाराज को समझाने का प्रयास कर रहे थे, तो प्रहलाद महाराज ने बोलना शुरू किया। पिछले श्लोक उन्होंने बोला, प्रहलाद महाराज ने कह दिया कि मैंने उस भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ जिनकी माया से मनुष्य की बुद्धि को चकमा देकर मेरे मित्र तथा मेरे शत्रु में अंतर उत्पन्न किया है। निसंदेह मुझको अब उसका वास्तविक अनुभव हो रहा है, यद्यपि मैंने पहले ही इसके विषय में प्रमाणित स्रोतों से सुन रखा है। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि मैं उस भगवान को नमस्कार करता हूँ जिसकी माया के कारण जीव चकमा खा जाता है, बिविंडर हो जाता है और किसी को मित्र और किसी को शत्रु मानता है। तो यहाँ पे आज कह रहे हैं कि अब मेरी वो मानसिकता नहीं रही, क्योंकि मुझे भगवान की उनके भक्तों की कृपा मिल गई है। स यदा अनुवृत्ति, उस भगवान की जब कृपा मिल जाती है पुंसाम एक बद्ध जीव को, तो क्या होता है, पशु बुद्धि विधीयते, उसकी जो पशु वाली बुद्धि होती है उसका नाश हो जाता है। तो पशु बुद्धि क्या होती है, अन्य ईशा तथा अन्य अहम इति भेद कदा सकी, कि वो पशु बुद्धि के कारण देखता है कि मैं अलग हूँ, ये अलग है, वो अलग है, अन्य ये अलग है और ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा मित्र है। और ये जो मति है भेद गता असति, ये बहुत ही डिजास्ट्रस है, ये बहुत ही हिंदी प्रभाव कह रहे हैं संकटपूर्ण है ऐसी मेंटेलिटी, ऐसी बुद्धि। तो बता रहे कि अब मेरी वो बुद्धि नहीं रही क्योंकि मुझे नारद मुनि और भगवान हरि की कृपा प्राप्त हो गई है, ये पशु बुद्धि मुझ में नहीं रही। तो श्रीला प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो असुरगण होते हैं वो प्रत्येक जीव को या तो अपने मित्र के रूप में देखते हैं या शत्रु के रूप में देखते हैं। जो उनकी बात मान जाए वो मित्र है, जो उनकी बात ना माने वो शत्रु है। जो उनके प्लान्स के अनुसार चले, योजना उनकी पूरी करने में मदद दे वो मित्र है, जो उनकी बात ना मान के उनके प्लान में कुछ अड़चन डाले तो वो हम भी देखते हैं, जब कोई हमारी बात मानता है हम हमें अच्छा लगता है, जब वो हमारी बात नहीं मानता हम उसको हमें अच्छा नहीं लगता, उसे शत्रु का भाव करते हैं। तो ये आसुरी प्रवृत्ति है और इसके कारण क्या होता है कि वो द्वेष उत्पन्न होता है और व्यक्ति असुरों से, जो हमारे जिसने हमारे भाई का वध किया, जिसने हमें गलत बोला, उसके प्रति वो गलत भावनाएं रखता है। अब शिल प्रभुपाद जी बता रहे हैं ये असुरों को मान सकता है और हम देखते हैं कि हम लोग अभी साधना भक्ति कर रहे हैं, हमारे अंदर असुर के भाव भी हैं और देवताओं के भाव भी हैं और हमारा मन हमें क्या संदेश देता है कि असुर भाव में और देवताओं के भाव में संतुलन बना के रखो। हम पूरे देवता भी नहीं बनना चाहते हैं। बचपन में सुनते थे वो शेर व शायरी होते थे ना, मैं रोज मंदिर जाता हूँ, पुजारी के साथ आलाप करता हूँ, कहीं मनुष्य से देवता ना बन जाऊं इसलिए रोज थोड़ा सा पाप भी करता हूँ। तो ये जो आसुरी भाव है ये हमें एक झूठी सिक्योरिटी प्रदान करते हैं कि मैं भोक्ता बना रहा हूँ, मेरी इंद्र तृप्ति चलती रहे, मेरी प्रॉपर्टी मेरे नाम ही रहे, एक सुरक्षा हमें तथाकथित सुरक्षा प्रदान होती है आसुरी भाव को बनाए रख के। इंद्र तृप्ति में ही सुख है, इस संसार में कुछ तो सुख मिलना ही चाहिए, परिवार का सुख भी होना चाहिए और साथ साथ में क्योंकि हम भक्तों के संग में हैं इसलिए हम भक्ति में भी प्रगति करना चाहते हैं, अच्छे ढंग से जप भी करना चाहिए, वैष्णवों की सेवा भी करनी चाहिए, है ना, खूब त्याग की भावना होनी चाहिए, ये भी हमारे अंदर है, देवताओं के गुण भी हैं और असुरों के गुण भी हैं जो बोलते हैं इतना ज़्यादा आगे मत बढ़ो, इंद्र तृप्ति का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, घर कोई और छीन के ले जाएगा, प्रॉपर्टी अपने नाम ही रहनी चाहिए, दूसरों की प्रॉपर्टी थोड़ी सा छीन वो अच्छा है, भगवान की सेवा में लगाइए। तो हमारे अंदर ये युद्ध चलता रहता है और हमारा मन हमें ये निर्देश देता है कि दोनों में संतुलन है, बहुत बड़ा देवदान मत बन जाओ, थोड़ी सी असुर प्रवृत्तियां भी रखो और थोड़ी सी सुर प्रवृत्तियां भी रखो। तो ऐसा करने से हम बहुत ही विचलित अवस्था में रहते हैं, क्या कहना आप लोगों का, ऐसा ऐसा दोनों से रहता है कि नहीं रहता। तो फिर बताया गया है कि इस बुद्धि के साथ हम भक्ति में प्रगति नहीं कर सकते। इस बुद्धि को क्या बताया गया इस श्लोक में, पशु बुद्धि, ये पशु वाली बुद्धि है। पशु बुद्धि का अर्थ है कि वो भोक्ता बनना चाहता है, वो भगवान बनना चाहता है और जो उसके भोग में अड़चन डालेगा उसको वो किसके रूप में देखता है, शत्रु के। और जो हमारे भोग में हमारी मदद करता है उसको हम किसके रूप में देखते हैं, मित्र। तो साधना भक्ति करते हुए भी हमारे में ये पशु मानसिकता बनी रहती है, हम अपने आप को भगवान समझते हैं और साथ ही साथ हमारे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं कि ये भगवान मुझे अपनी सेवा में लगा। जब भी कोई बल जीव इंद्र तृप्ति करता है तो एक तरह से वो भगवान के साथ स्पर्धा कर रहा है, कॉम्पिटिशन कर रहा है कि भगवान परम भोक्ता है और मैं भी छोटा मोटा भोक्ता बनना चाहता हूँ, तो हम कॉम्पिटिशन कर रहे हैं और कॉम्पिटिशन में कौन जीतेगा इसमें कोई सोचने की बात ही नहीं। तो हम दोबारा से प्लान बनाते हैं, फिर से कॉम्पीट करेंगे, फिर हमारा प्लान फेल हो जाता है, इस ढंग से हम लगे रहते हैं। तो इस पशु बुद्धि से ऊपर उठना बहुत जरूरी है। पशुओं में इतनी बुद्धि में नहीं होती कि इंद्र तृप्ति करते करते वो मर जाते हैं, कई बार पशु इतनी ओवर ईटिंग कर लेते हैं कि ओवर ईटिंग के कारण मर जाते हैं, उनको पता भी नहीं होता कितना खाना है, इतनी बुद्धि में नहीं होती। यानी कि वो अपने मन और शरीर की आवश्यकता को पूरा करने में इतने लीन हो जाते हैं कि आत्मा के विषय में वो सोच ही नहीं सकते, शरीर और आत्मा का भी वो सही ढंग से ख्याल नहीं रख सकते। तो अगर यही पशु मानसिकता हमारे में बनी रही तो हम भक्ति में कैसे प्रगति करेंगे और भक्ति के सूक्ष्म तत्वों को कैसे समझ पाएंगे। और इस पशु बुद्धि का अर्थ यह है कि हम राग और द्वेष करें, किसी को अपना मित्र मानेंगे जो हमारे प्लान्स में हमारी मदद करेगा, जो हमारे मन के अनुसार नहीं चलेगा उसके प्रति हम शत्रु का भाव रखेंगे। भगवद गीता के 30वें अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं अर्जुन को इंद्रस्य इंद्रस्याते राग द्वेषो व्यवस्थितो तयोनावश्यम आगच्छेतो हि अस्य परिपन्थनो। प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के लिए नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग और द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए क्योंकि आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक है। राग और द्वेष के वश में अगर हम हो जाएंगे तो राग और द्वेष को बताया गया है कि आत्म साक्षात्कार के पथ में वो बाधक है। बलदेव विद्याभूषण जी बोलते हैं राग और द्वेष भक्ति के हाईवे के ऊपर लुटेरे हैं। एक सड़क जा रही है बैक टू गॉड हेड हाईवे, सीधा तेज स्पीड से भाग के जा रहा है उसके ऊपर, लेकिन जो राग और द्वेष है वो उसकी भक्ति की चोरी करने वाले हैं। आत्म साक्षात्कार के पथ में इतने बड़े बाधक हैं। राग और द्वेष के कारण हम क्या करेंगे, किसी को मित्र ठहराएंगे और किसी को शत्रु। इसके बाद भगवान के सातवें अध्याय में भगवान बताते हैं इच्छा द्वेष समुत्थे न द्वंद मोहे न भारत सर्गे यान्ति परन्तपः तेरे द्वंद मोह निर्भक्ता जनते मां। इच्छा द्वेष समुत्थे न द्वंद मोहे न भारत सर्वभूतानि सर्वोऽहं सर्गे यान्ति परन्तपः। इच्छा और द्वेष के कारण जीव इस संसार में आता है और बार बार इसका चक्कर। तो अगर ये राग और द्वेष अपने पास में रखेंगे तो हम भक्ति में कभी दृढ़ नहीं हो सकते, हमेशा मोहित रहेंगे इस द्वंद से। इस भौतिक जगत में द्वंद है, सुख है तो दुख है, सर्दी है गर्मी है, मान है अपमान है, यश है अपयश है, सब विरोधी तत्व हैं। और इन विरोधी तत्वों के बीच में रहता हुआ जीव भी विरोधी हो जाता है। जीव किसी अथॉरिटी को एक्सेप्ट नहीं करता और वो पूरा मोहित हो जाता है कभी ऐसे कभी ऐसे पेंडुलम की तरह। हम अपनी भक्ति में देखते हैं उतार चढ़ाव उतार चढ़ाव उतार चढ़ाव उतार चढ़ाव, बहुत ज्यादा दुख बहुत ज्यादा सुख, हम भक्ति में विचलित हो जाते हैं क्योंकि ये द्वंद है, हम धीर नहीं रह पाते। तो ये पशु मानसिकता के कारण है। और जब तक हम इस पशु मानसिकता में रहेंगे भक्ति करते हुए तो इस भक्ति के शक्ति का अनुभव नहीं कर पाएंगे। हम भक्तों से हो सकता है द्वेष करें और इस द्वेष के कारण हमारी प्रगति रुक जाती है और हमें कोई रियलाइजेशन साक्षात्कार नहीं होंगे और हमारी नित्य तत्ति में रुचि बनी रहती है। इसलिए अति आवश्यक है कि हम इस पशु बुद्धि से ऊपर उठें। जब हम पशु बुद्धि से ऊपर उठेंगे तो श्रीला प्रभुपाद बता रहे हैं कि एक वैष्णव का विचार कैसे होता है। श्रीला प्रभुपाद जी ने इसमें बताया कि सबों को भगवान की सेवा करने के लिए सबों को मैत्री भाव रखना चाहिए। जब हम भगवान की सेवा में जुड़ते हैं तो प्रभुपाद इंग्लिश में कहते हैं वी शुड बी वेरी फ्रेंडली, फ्रेंडली होना चाहिए। फ्रेंडली होने का क्या मतलब है, चार चीजें बताई कि कैसे हम भक्तों के साथ मैत्री भाव फ्रेंडली हो सकते हैं। हर एक को चाहिए कि दूसरों की गई भगवान की सेवा की प्रशंसा करें। हमें दूसरों के दर्द लोग जो सेवा कर रहे हैं उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अप्रिशिएट का अर्थ है जब वो व्यक्ति सेवा करते हुए आगे बढ़े तो हमें भी खुशी होनी चाहिए। अगर हम दूसरों की सेवा को देखकर प्रसन्न नहीं हो रहे इसका मतलब क्या है, पशु बुद्धि है, द्वेष है अंदर छिपा हुआ। दूसरा और अपने ही सेवा पर गर्वित नाम है। हमें कहीं लगता है हम ऐसी सेवा कर ले कि जो ना भूतो ना भविष्य थी, ना कभी किसी ने की थी ना कभी भविष्य में कोई करेगा। नो मैन हैज एवर गॉन बिफोर, तो पहले कोई कर ही नहीं पाया जो मैंने किया है। हम बड़े गर्वित रहते हैं, जब गर्वित रहते हैं तो दूसरों की सेवा को हम ज्यादा प्रशंसा नहीं कर पाते। यही वैष्णव की सोचों की विधि है, वैकुंठ विचार है। फिर उसमें क्या लिखा गया है कि सेवा करने के लिए भक्तों में स्पृधा नहीं होनी चाहिए, कंपटीशन की भावना। क्या उसने इतना अच्छा मतलब हो जाएगा अब देखता हूं मैं। अगर कॉम्पिटिशन की भावना है भी, वैकुंठ में भी कॉम्पिटिशन की भावना है, कॉम्पिटिशन की भावना में वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपनी सेवा के स्तर को और बढ़ाएगा। और हम यहाँ बौद्ध जगत में क्या करते हैं कि अपने आप को ऊपर रखने के लिए दूसरे की सेवा को हम कंडेम करते हैं, उसकी प्रशंसा नहीं करते। एक बार क्या हुआ, बैकुंठ में कैसे कॉम्पिटिशन होता है, भगवान राम के धाम में साकेत में पर हनुमान जी थे और हनुमान जी इतने मुस्तैद और इतने बुद्धिमान, हर सेवा तुरंत इतनी सेवा कर लेते थे, बाकी जो भगवान के सेवक थे बिल्कुल सेवा ही न होते। किसी कुछ है नहीं सेवा, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न, सीता माता सब खाली बैठे हैं, ब्रह्मा धड़ाधड़ सब सेवा कर रहे हैं। तो उन्होंने सारे ध्वजावश्यक इष्ट गोष्ठी बनाई, समस्या भगवान की सेवा हम कर नहीं पा रहे, क्या हो रहा है, सारा हनुमान सब कुछ किया जा रहा है, अच्छी बात है सेवा में हमें तो कुछ मिलना चाहिए। उन्होंने बड़ा सोच समझ के प्लानिंग की, उन्होंने जितनी सेवाएं भगवान की हो सकती है फटाफट ले, लेकिन से बड़ा फर्क पड़ता है, थोड़ा सारे सारी सेवा निकले और सबको एलोकेट कर दो, ज्यादा कर दिया, हनुमान को एक सेवा दे दो, कोई सेवा नहीं, सिर्फ प्लानिंग कर दे। और ये करके राम जी के पास गए, देखो आपकी ये सेवा है, वही सब से एलोकेट किए हैं, भगवान राम प्लान समझ गए, बोला ठीक है कोई बात नहीं, हनुमान को कोई सेवा नहीं, बाहर मालूम चल गया सब बड़े खुश, हनुमान को कोई सेवा नहीं, प्लानिंग कर ले। हनुमान जी को मालूम चला, हनुमान जी बिल्कुल भी उदास नहीं हुए, हनुमान जी ने क्रिटिसाइज करना शुरू नहीं कर दिया, देखो कितनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं सब, ये कर रहे हो, और हमारे साथ सब हम यही बोले थे, वो सब मिल गए, मेरे को पीछे कर दिया। वो हसीदा राम जी के पास गए, बोले राम जी जो भी हुआ आपकी अनुमति से हुआ, बहुत अच्छा हुआ, मैं बहुत खुश है सब लोगों को सेवा मिल गई है, लेकिन मैं देख रहा हूँ इस लिस्ट में एक सेवा नहीं है। राम जी बोला क्यों, अरे जब आप जमाई लेंगे तो चुटकी कौन मिल जाएगा, ये सेवा ही नहीं। बिल्कुल ठीक है, टेक्निकली बिल्कुल ठीक हो तो ये सलाह मिलो। तो जब सब भक्तों को मालूम चला, वही बड़े खुश हो गए, देखो इन्होंने के भगवान के पास गया भी, इसने कोई कंप्लेंट भी नहीं की, और इन्होंने सेवा भी ले ली, और वास्तव में ये है कि ये सेवा कर ही नहीं पाएगा भगवान को, इतना उन्हें थोड़ी जमाई लेते रहे, भगवान अब तक कभी जमाई ली नहीं, होना कभी लेंगे, तो ठीक है पेपर के ऊपर सेवा ही कर तो पाएगा नहीं, हम सारी सेवा करेंगे। लेकिन हनुमान जी का इतना उत्साह था सेवा करने का कि भगवान राम ने कृपा करके क्या की, हर दूसरे बड़े भगवान जमा ही लेने लगे, और राम जी हनुमान जी चुटकी बजा रहे, और नतीजा ये हुआ कि बाकी क्योंकि बाकी सेवक खाली बैठे रहे, हनुमान की सेवा सबसे ज्यादा हो गई, चुटकी की बजा रहे हैं, अपनी बजा रहे हैं, अपनी बजा रहे हैं। जब भगवान राम रात को अंतःपुर में विश्राम करने जाते हैं सीता माता के साथ, हनुमान जी पीछे पीछे चुटकी बजा रहे, सीता जी परेशान हो गई, यहाँ तो छोड़ दो, हनुमान जी लगे हुए राम को, बोला राम ने क्या कर सकता है, आप सबने बनाया है, अरे तो बोला ना कौन चुटकी बजाया क्या बोलेगा तो आप देखो क्या हो रहा है। जब ये सब हुआ तो सीता माता बोलते हैं मुझसे क्या करती है, उन्होंने तुरंत हनुमान जी को प्रणाम किया, बोला मैंने पति अपराध किया है, आप जो सेवा कर सकते हो आप ही कर सकते हो, और आपने हमारे लिए क्या क्या नहीं किया, इस जगत सीता जी ने अपने गलती स्वीकार। ये है वैकुंठ जगत का कॉम्पिटिशन। भगवान से जब स्तुति कर रहे थे पृथु महाराज, तो पृथु महाराज मतलब मुझे अपने चरणों की जो सुगंध आती है, उनके चरणों की सेवा करना चाहता हूँ, लेकिन चरणों की सेवा करूंगा तो वहां लक्ष्मी जी आपकी सेवा कर रहे हैं, लेकिन मुझे मालूम है कि आप इसको प्रेफरेंस दोगे, मुझे प्रेफरेंस दोगे, क्योंकि मैंने आपके स्तुति किया, मेरी कोई योग्यता नहीं है, और आप तीन मंत्र लो। तो इस जंग से भौतिक जगत में जो हम सेवा करते हैं तो हम स्पृधा के नाम पर एक दूसरे से द्वेष करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद तीसरा बचाते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को पूरे सामर्थ्य भर सेवा करने देना चाहिए, हर एक किसी को उसकी योग्यता के अनुसार उसको सेवा करने की अनुमति फैसिलिटीज देने चाहिए, और हर एक को चाहिए कि दूसरे द्वारा की जाने वाली सेवा को समझे। ये है मैत्री भाव, दूसरों की सेवा की प्रशंसा करो, अपनी सेवा पर गर्वित ना रहो, दूसरों की उसकी योग्यता के अनुसार सेवा करने की सुविधाएं दो, और चौथा दूसरों की सेवाओं को समझो। जैसे पुल बना रहे थे लंका का, तो जो कहानी है कि लहरी भी आती है, हनुमान जी बोलते भाग यहाँ से, क्यों बीच में डिस्टर्बेंस कर रही है, छोटी सी नहीं कुछ करेगी तो है नहीं, चल बड़े बड़े पत्थर डाल रहे हैं और छोटी सी किनारी आ रही है कुछ कर दे, तो राम जी ने उनको डांटा कि जो उसकी योग्यता है इसको सेवा करने दो, और तुम्हें इसकी सेवा समझनी चाहिए। इसी ढंग से हम किसी भी व्यक्ति को बोले क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकता, हर एक व्यक्ति में कुछ ना कुछ योग्यता है और उसको समझे। शिवा सांगन में सभी भक्तों के पूरी रात कीर्तन करते थे, वहां एक बुढ़िया थी वो क्या करती थी, सब भक्तों के लिए पानी लाती थी, उसका नाम क्या था, दुखी। कोई उसमें ध्यान नहीं दे रहा था, मैं जितने भावों ने पकड़ लिया कितनी अच्छी सेवा करती है, अब तुम दुखी नहीं सुखी हो। तो दूसरों की सेवा करने जो उसकी योग्यता उसको करने का मौका दे और उसकी सेवा को समझे, ये मैत्रीपूर्ण भाव है। तो ये वैकुंठ वातावरण है, वैकुंठ में भगवान ने बहुत सुंदर माला डाली होती है और उस माला के आसपास मधुमक्खी बी भिमना रही होती है, भी कर रही है, और ऊपर बहुत सुंदर सुंदर पक्षी उड़ रहे हैं, कोयल इत्यादि, जो कि बहुत मधुर गान कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही वो देखते हैं कि ये मधुमक्खी भिमना रही है, वो जो पक्षी है अपना गान बंद कर देते हैं, इसको मौका देते, इसको भिन्न भिन्न आने दो। यहाँ पे बोला क्या है, भिन्न भिन्न गायक पीछे हो जाए, हम इतना मधुर गाते हैं, लय में गाते हैं, सुर में गाते हैं, हमें गाने दें, ये बोलेंगे ना। लेकिन वहां पे वैकुंठ में गए, उसको भी मौका देते हैं गा। और ऐसा नहीं कि वो जब गाड़ी उल्टा सीधा बंद करके तब हम गाना शुरू करके वो भागे वहां से, सारे के सारे पक्षी बैठ के वहां सुनते हैं और उसकी प्रशंसा करते हैं, देखो भगवान के गुणगान में कैसे काम किए, ये वैकुंठ कल्चर है। तो ये मैत्रीपूर्ण भाव हमारे में क्यों नहीं आ पाता सेवा करते हुए? अगर ऐसा हो जाए तो कितना सुंदर वातावरण बन जाएगा। हम लोग कहीं भक्तों को देखते हैं कि पहले बहुत अच्छा चल रहा था, जैसे भक्तों बीच में सेवा करनी शुरू की मन खराब हो गया, मैं नहीं करना चाहता सेवा, मैं वही बैठ के पुराना भक्त अच्छा था, कोने में कहीं बैठ जाओ, किसी को पता भी नहीं चले मेरा नाम क्या है क्या है, आराम से बैठ के जब करूँ थोड़ा बहुत अच्छा सुन भाव जमे से। भक्तों के पीछे सेवा करते हैं क्या क्या हो जाता है, क्या क्या सुनने को बढ़ता है, क्या क्या अंदर ही मन में क्या होता है। क्योंकि हम सेवा करते हैं तो हमारे सारे सारे अनर्थ हमारे सामने आ जाते हैं, और सारे अनर्थों को हम सामना नहीं कर पाते, वो सामने आते हैं तो उसका सामना नहीं कर पाते कि मैं इतना इतने गंदे अनर्थ है मेरे लिए, थोड़े छोड़ छोड़ उसको छुपा के रखो, शांति से कहीं बैठेंगे। तो क्यों नहीं ऐसा वातावरण हो जाता जहाँ सेवा करने में इतना आनंद आए, एक वैकुंठ का वातावरण? क्या कारण लगता है आपको, क्या कारण है? परिपक्वता क्या मतलब है? बहुत सारा है, इस श्लोक में इसका उत्तर है, पशु बुद्धि, असली मानसिकता, कंपटीशन की भावना, छाने की इच्छा है, पूजा ला प्रतिष्ठा की इच्छा, ये पशु बुद्धि है, पशु मानसिकता है। इससे हमने ऊपर उठना है, और इससे ऊपर उठकर हम इस वैकुंठ कल्चर को, वैकुंठ वातावरण को हम प्राप्त कर सकते हैं। श्री प्रभुपाद बोलते हैं मूवमेंट इसीलिए, आंदोलन इसीलिए है कि इस भौतिक जगत में हम वैकुंठ को स्थापित कर सकते, ये पूरा हमारा जीवन का लक्ष्य है। और जो सेवा हम यही कर रहे हैं वही भगवान के धाम है, क्योंकि हमें अपने आप को हम सेवा की भावना अनुकूल करने के लिए यहाँ सेवा कर रहे हैं, और फिर जब अनुकूल हो जाएगी हम भगवान धाम जा सकते हैं। तो ये बहुत सुंदर एक अवसर है हमारे पास। तो अब हम चर्चा करेंगे कि कैसे अपने इस गलत मानसिकता से ऊपर उठकर हम वास्तव में इस वैकुंठ भावना में आ सकते हैं, सही सेवा की भावना में आ सकते हैं, जिसके लिए पशु बुद्धि जो हमारे बनी हुई है एक बहुत बड़ी अड़चन है। तो सुनना चाहेंगे कि क्या हमें करना होगा कि हम इससे ऊपर उठ सकें। तो सबसे पहले अभी वाले हम सचिंद्र महाराज का लेक्चर सुन रहे थे, सचिंद्र महाराज ने एक बहुत सुंदर वाक्य बताए, वो शायद अगले से अगले संडे आएंगे 22 तारीख को भी यहाँ से। उन्होंने बोला कि इफ यू नीड एनीथिंग which you have never had, then you should be ready to do those things which you never did. Sunday, if we want anything which we never had, then we should be ready to do those things which we never did. अगर हम उन वस्तुओं को चाहते हैं जो हमारे पास कभी नहीं थी, तो हमें तैयार होना चाहिए उन चीजों को करने के लिए जो हमने अभी तक कभी नहीं थी। अगर हम वो वस्तु चाहते हैं जो हमारे पास अभी नहीं थी, तो हमें तैयार होना चाहिए वो चीजों करने के लिए जो अभी तक हमने कभी नहीं की, यानी कि अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुआ उसको पाने के लिए कुछ अलग ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बुद्धि, पशु बुद्धि ये है कि हम मित्र और शत्रु देखते हैं, भोग की इच्छा रखते हैं। और श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में नारद मुनि बताते हैं कि असली बुद्धि क्या है। श्री नारद मुनि जी बताते हैं कि असली बुद्धि है तस्य हेतु प्रत्येत कोविदो, कि असली बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो उस व्यक्ति उस चीज की अभिलाषा करे जो ब्रह्मा जी से लोक के लेके पाताल लोक तक कहीं भी उपलब्ध नहीं है। यहाँ इस बात जाते हैं बहुत ही स्मार्ट व्यक्ति होते हैं, वो बोलते हैं मैं कुछ भी इंडियन नहीं हूँ, नथिंग स्वदेशी, एवरीथिंग विदेशी, सब इम्पोर्टेड, जो यहाँ कहीं ना मिलता हो, जो रेयर वस्तु को उसको इकट्ठा करके दिखाने में आनंद आता है, ये मेरे पास है। तो असली बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो ऐसी वस्तु के लिए प्रयास करे जो ब्रह्मा जी के से लोक के लोक से लेकर पताल लोक तक कहीं भी इस भौतिक जगत में उपलब्ध ना हो, वो असली बुद्धिमान व्यक्ति है। और वो वस्तु क्या है? कृष्ण का प्रेम। अभी तक अनादि काल से हम उस कृष्ण प्रेम से विमुख हैं, वो चाहिए। अगर वो चाहिए तो ऐसा कुछ करना पड़ेगा जो अभी तक नहीं किया, ठीक है। अगर हम वो ही कर रहे हैं जो पहले करते आए हैं तो क्या हमें ये चीज मिलेगी जो अभी तक नहीं मिली? नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी, ठीक है ना। कोई बोल सकता कृष्ण प्रेम की आवश्यकता है या नहीं चाहिए? तो कृष्ण प्रेम के बिना जीव का जीवन अधूरा है, जीव का जीवन ही नहीं है, खोखला पर हमेशा बना रहेगा हमारे अंदर। तो कृष्ण प्रेम की भक्ति अति आवश्यक है। इस भक्ति को रूप गोस्वामी जी सुदुर्लभा बताते हैं, प्रेम भक्ति सुदुर्लभा, बहुत ही मुश्किल से मिलती है। और उन्होंने इस भक्ति के सुदुर्लभ होने के दो मुख्य कारण बताए। पहला कारण ये है कि जब हम साधना करते हैं वो साधना अनासंग है, यानी कि आसक्ति रहित है। हम साधना तो कर रहे हैं लेकिन राधा कृष्ण से कोई आसक्ति नहीं है। हम साधना एक मैकेनिकली कर रहे हैं, बहुत ही क्वालिटी बहुत है साधना की लेकिन क्वालिटी नहीं है। हो सकता है मैं हर मंगल आरती में उपस्थित भी हूं टाइम से, हो सकता है हम चौथे सौ से माला भी कर रहे हो सकता है बहुत सुंदर तिलक लगाते हो, बढ़िया से फीडबैक भी हो, सब कुछ चकाचक। लेकिन जो होना चाहिए साधना भक्ति का अर्थ ऐसी क्रियाएं जो हमें भाव भक्ति और प्रेम भक्ति तक ले जाए। हम उस उद्देश्य से साधना भक्ति नहीं कर रहे, केवल नियम आ रहा है, केवल एक फॉर्मेलिटी के लिए और मैकेनिकली किए जा रहे हैं, तो उससे भगवान कोई इंप्रेस नहीं होने वाले। ये पहला कारण है। और दूसरा कारण ये है कि प्रेम भक्ति देने के लिए भगवान थोड़ा खुद हिचकिचाते हैं, भगवान देना भी नहीं चाहते। हो सकता है हम अच्छी साधना भक्ति कर भी रहे हैं आसक्ति के साथ, उसके बाद ही भगवान मिले नहीं, अभी नहीं, तो फिर क्या चांस है प्रेम भक्ति मिलने के? पहले तो साधना भक्ति करो राधा कृष्ण से आसक्ति के साथ, वो कर लो, उसके बाद ही गारंटी नहीं कि भगवान दे देंगे। भगवान नहीं देता होता स्वराट है तो फिर क्या चांस है? हमारा प्रभु क्या डिस्करेज कर दिया आपने तो, ऐसा क्यों बोलते हो? सारी उम्मीद खत्म हो गई। लेकिन हम यहाँ पे आ जाते कतरित हमें हतोत्साहित नहीं उत्साहित होने के लिए। सबसे उत्साहित हमने बात किया है कि जब भगवान तो क्योंकि भगवान दे देंगे प्रेम भक्ति तो उस भक्त के वश में हो जाएंगे, लेकिन जब भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं उनके हृदय में भक्त शिव को देने में करुणा जागृत होती है, और शुद्ध भक्त के आग्रह करने पर भगवान फिर भक्त शिवों को भी भक्ति प्रदान कर देते हैं। हमारे जो एकमात्र आशा है, होप है, वो है हमारे पास जगत गुरु श्रील प्रभुपाद। प्रभुपाद जी की कृपा से हम इस प्रेम भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। यस्य प्रसादा भगवत प्रसाद, अन्यथा हम बोलेंगे केवल अपनी साधना के बल पर हम भगवान से प्रेम कर लेंगे, इम्पॉसिबल, असंभव है लगता। तो हमें श्रील प्रभुपाद जी को प्रसन्न करने के लिए करना चाहिए। लेकिन इसके बाद ये भी नहीं है कि ठीक है जी तो प्रभुपाद जी हैं यहाँ पे प्रतिदिन खूब नाचेंगे जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद, प्रेम भक्ति मिल जाएगी। साधना को हमें आसक्ति से करना ही चाहिए। साधना के जो 64 अंग है, एक एक अंग को बहुत ही ध्यान पूर्वक, बहुत ही सिंसियरली, अटेंटिवली और भक्तिमय तरीके से करना चाहिए। चाहे हम मंगल आरती गा रहे हैं, चाहे हम तुलसी आरती गा रहे हैं, हम उसके मतलब पे, अर्थ पे ध्यान दें, जब करें ध्यान पूर्वक करें और सिंसियरली करें। भगवान जब देखते हैं कि एक भक्त बहुत ही सिंसियरली सामना कर रहा है, जब गुरु ये देखते हैं तो फिर वो रिकमेंड करते हैं। तो उस सिंसियर सोल को खींचने के लिए भगवान कुछ भी कर सकते हैं। प्रभुपाद कहते हैं ये प्रोसेस इतना परफेक्ट है कि किसी को भी परफेक्शन की तरफ ड्रैग कर लेते हैं। सिंसियर सोल इज ड्रैग्ड टुवर्ड्स कृष्ण। तो ये भक्ति, इस दुर्लभ चीज को हम प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें वो चीजें करनी पड़ेगी जो अभी तक हमने नहीं की। क्या करना पड़ेगा? श्रीमद् भगवद्गीता के 10वें अध्याय के 4वें और 5वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि बुद्धि का क्या अर्थ है। भगवान श्री भगवान बता रहे हैं कि बुद्धि का अर्थ है निरुक्षी विवेक करने वाली शक्ति, यानी कि हर वस्तु को सही पर्सपेक्टिव में देख सके। और इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हम लोगों को, जीव को अपनी विचार शक्ति का कैसे विकास करना चाहिए। पावर ऑफ थॉट, प्रभुपाद लिखते हैं, दिस पावर ऑफ थॉट शुड बी डेवलप्ड इस विचार शक्ति का विकास हमें कैसे करना चाहिए? बताया गया है कि शास्त्र मर्मज्ञों, साधु पुरुषों, गुरुओं तथा महान विचारकों की संगति में रहकर विचार शक्ति का विकास करना चाहिए। यानी कि जो शास्त्र का मर्म जानते हैं, श्रील प्रभुपाद जी ने जो पर्पस लिखे हैं, साधु पुरुष है, वैष्णव है, स्पिरिचुअल मास्टर है, गुरु है और महान विचारक जो थिंकर्स हैं, उनकी संगति में रह के हमें अपनी विचार शक्ति का विकास करना चाहिए। हमारा मन हमेशा इंद्र तृप्ति के प्रति आकर्षित होता है, लेकिन जब हम श्रील प्रभुपाद के पर्पस को, स्पिरिचुअल मास्टर को और वैष्णवों का संग करेंगे, उनके संग में रह के हमें मन को पॉजिटिव थिंकिंग देने का प्रयास करना चाहिए। हमारे मन तो हमें नीचे की तरफ ही ले जाता है, लेकिन ये सारे के सारे सुविधा हमारे मन को, हमारी विचार शक्ति को विकसित करने के लिए है। जब तक हम अपने थॉट प्रोसेस को नहीं बदलेंगे, हमारी क्रियाएं नहीं बदलेंगी, जब तक हमारी क्रियाएं नहीं बदलेंगी, हमें वो वस्तु प्राप्त नहीं होगी जो अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। तो अपने विचार शक्ति को विकसित करना बहुत आवश्यक है, इसके लिए अपने थॉट प्रोसेस को बदलना बहुत आवश्यक है, और इसके लिए हमें संग करना भक्तों का, गुरु का और प्रभुपाद के पर्पस का बहुत आवश्यक है। तो कैसे संग करना चाहिए, ये विषय बहुत बड़ा है, कम समय केवल जस्ट शोइंग द जस्ट ऑफ दिस। दूसरे स्कंद के आठवें अध्याय के चौथे श्लोक में सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, क्षणोदा श्रद्धा नित्यम गणतश्च स्वचेष्टितम काले नाति धीरेण भगवान विशते हृदि। इसमें तीन चीजें हैं कैसे हम भगवान को अपने हृदय में ला सकते हैं। सबसे पहले नियमित रूप से हम भागवत का श्रवण करें, नित्य भागवत से नियमित रूप से सुने। दूसरा श्रद्धया, श्रद्धा के साथ इसमें विश्वास रखें, पूरी श्रद्धा के साथ। और तीसरा बताया गया है स्वचेष्टितम, हर एक भक्त को प्रयास करने पड़ेंगे, यानी कि जो हम सुनते हैं पढ़ते हैं उसको अपने जीवन में उतारें, नियमित रूप से सुने और पूरे भागवतम के श्लोकों पर, तात्पर्य पर विश्वास रखें, और तीसरा अपने प्रयास करें, स्वचेष्टा करें, जो हमने सुना पढ़ा समझा है उसको अपने जीवन में उतारें। ऐसा करेंगे काले नाथ तीर्थ नाम भगवान विशते हृदय, बहुत जल्दी ही बिना देरी के भगवान हमारे हृदय में निवास कर लेते। कौन सी तीन चीजें करनी है? रेगुलरली भागवत सुने, श्रद्धा रखे, और तीसरा जीवन में उतारने का प्रयास करें। ये करेंगे श्रोता श्रद्धा नित्य ग्रहण दश्चय स्वचेष्टितम, इससे क्या होगा कि भगवान हमारे हृदय में निवास करेंगे, ये गारंटी दी जाती है। तो निश्चित रूप से भगवान हमारे हृदय में निवास करेंगे तो भगवान सब कुछ हमारे हृदय को साफ कर देते हैं। श्रोता हूँ स्वतः कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय तो से ये बतराणी विद मोती सुहृद सदाम, भगवान हृदय को साफ करके फिर उनके निवास करेंगे। तो इस जंग से हम अपने पशु बुद्धि से ऊपर उठ सकते हैं, और हमें अपने मन को नियंत्रण करने के प्रयास के लिए ध्यान देना चाहिए कि मन की अगर सुनेंगे तो मन को हमें तबाही के रास्ते पे ही ले जाएगा। मन हमेशा भक्तों में हमें दोष दिखाएगा, और जब बताया जाता है भगवद गीता में 13वें अध्याय का 29वां श्लोक है कि जब एक भक्त दूसरों को देखता है कि कोई भक्त से प्रति बुरा भी करता है तो भक्त ये सोचता है कि उसको अंदर परमात्मा ने प्रेरित किया होगा। अगर कोई हमारा बुरा भी करे तो हमें देखना चाहिए निश्चित रूप से परमात्मा ने इसको प्रेरित किया होगा और ये मेरे कर्मों का फल है। तो हम वो जो भक्त है वो तो केवल एक इंस्ट्रूमेंट है मेरे कर्मों का फल को देने के लिए, तो उस इंस्ट्रूमेंट में क्यों लेकर जंग से हम देख सकते हैं। और ये प्रोसेस अपने आप में बहुत शक्तिशाली है, बहुत शक्तिशाली है। ये संकीर्तन आंदोलन चैतन्य महाप्रभु जो झारखंड के जंगल से गए तो सभी पशुओं की पशु बुद्धि को उन्होंने समाप्त कर दिया, सारा द्वेष, शेर और हिरण आपस में गले मिल रहे हैं, चुम्बन कर रहे हैं, नाच रहे हैं, सांप और मोर इकट्ठे नृत्य कर रहे हैं, जो आपस का भेदभाव था सब समाप्त हो गया क्योंकि सबके केंद्र में कौन थे? चैतन्य महाप्रभु। ये संकीर्तन आंदोलन की शक्ति है। और ऐसा नहीं कि चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते हुए चले गए, उसके बाद शेर और हिरण ने आलिंगन किया हुआ था और शेर ने फिर हिरण को खा लिया, अब तो कीर्तन बंद हो गया। सीधे चला गया और मोर ने शाम को खा लिया है ना। ऐसा नहीं तो ऐसा हमारे साथ होता है, कीर्तन में तो हाथ मिला के नाच लेंगे, उसके वजह से कीर्तन खत्म हुआ फिर देखते रहेंगे फिर दर्शन। ऐसा नहीं था चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा कीर्तन किया, ऐसा कीर्तन किया कि उस कीर्तन के द्वारा उनको प्रेम मिल गया और उस प्रेम के द्वारा उनके हृदय का द्वेष पूरा समाप्त हो गया और उन्होंने जो अपनी गलत धारणा अपने बारे में बना रखी थी कि मैं शेर हूं, मैं हिरण हूं, मैं मोर हूं, मैं सांप हूं, वो खत्म हो गई। वो अपने आप को भगवान के अंश के रूप में देखने लगे। ये इस आंदोलन की शक्ति है। श्रील प्रभुपाद जब विदेश में गए तो पशु समान लोगों को उन्होंने प्रचार किया। श्रील प्रभुपाद जब हिप्पियों को लेक्चर देते थे और आध्यात्मिक जगत का वर्णन करते थे, चिंता मणि प्रकर सदमसु कल्प वृक्ष, प्रभुपाद ऐसे बोलते थे पूरा। तो हिप्पियों को कुछ पता नहीं था क्या बोल रहे हैं, खुला हुआ क्या है। तो उन्होंने पूछा प्रभुपाद स्वामी जी व्हाट इज दिस स्पिरिचुअल वर्ल्ड लाइक। तो प्रभुपाद समय को कुछ समझ आएगा नहीं। स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज लाइक एन ओशन ऑफ एलएसडी, एलएसडी का समुद्र है, तो बड़ा अच्छा है, अच्छी बात है। इनके लोगों से प्रभुपाद को डील करना पड़ा, बिल्कुल पशु समान। नई नई एक लड़की थी आई प्रभुपाद, स्वामी जी आई वॉन्ट टू गो टू हिमालय, हिमालय में जाऊंगी। क्यों मैं हिमालय में जाऊंगी? बिकॉज आई विल गो हायर एंड हायर, माई कॉन्शियसनेस विल बी एलिवेटेड। One will stay on the ground, just serve me, I will take you to the highest support. Hey, Rob, मेरी सेवा करो, मैं तुम्हें सबसे उच्चतम धाम में ले जाऊंगा। तो ये क्या है? सार यदा अनुव्रता, जब भगवान की कृपा भक्तों के माध्यम से मिलती है, पुंसा बद जीव की पशु बुद्धि क्या बनती है? अभिधि, वो कट जाती है, खत्म हो जाती है। तो हमें किसी ढंग से अपने जीवन में प्रभुपाद जी की कृपा को और राधा राधिकरण जी की कृपा को आकर्षित करना है। उस कृपा से ही हमारी ये पशु बुद्धि समाप्त होगी। कृपा का अर्थ क्या है? कि हमें बहुत ही आसक्ति के साथ साधना करनी चाहिए और बहुत आसक्ति के साथ साधना करने का अर्थ है बहुत ही नियमित रूप से हम श्रवण करें, श्रद्धा पूर्वक श्रवण करें, जो सुने उसको अपने जीवन में उतारे और बहुत ही ध्यान पूर्वक जप करने का हम प्रयास करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम सबका अनुभव है जब हम संगीतन में भाग लेते हैं, जब हम हरे कृष्ण का ध्यान पूर्वक जप करते हैं, तो हमारी जो भक्तों के प्रति भावना है वो बदल जाती है। हमें सभी भक्त अच्छे लगते हैं। जब किसी दिन हम जब सही ढंग से नहीं करते हैं, संगीतन आंदोलन से दूर रहते हैं, तो सभी भक्त हमें शत्रु प्रतीत होते हैं। हमारे जीवन में कितना हमारे अंदर विनम्रता है, कितना हम भक्ति में प्रगति कर चुके हैं, इसका बहुत सीधा सा एक मापदंड है। ये जो मेरे भक्ति तीस वाली मालूम जाते हैं कि हम कितने विनम्र हैं, कितने भक्ति में प्रगति कर चुके हैं, इससे हम अपने आप को नाप सकते हैं कि कितनी मात्रा में हम ये मानसिकता रखते हैं कि ये मेरा मित्र है, ये मेरा शत्रु है। जितनी मात्रा में ये मानसिकता रखेंगे नहीं, ये सब तो मेरे मित्र है, नहीं ये सब मेरे शत्रु है। हम लोग शत्रु तो नहीं बोलते, वैष्णव समाज में मैं इनको पसंद नहीं करता, मैं इनको पसंद नहीं करता, ये मैं इनको पसंद करता, इसका मतलब उतने हम विनम्र नहीं। जो विनम्र भक्त होगा वो अजात शत्रु है, वो किसी को भी अपना शत्रु नहीं मानता। हो सकता है दूसरे उसको अपना शत्रु माने, लेकिन भक्त दूसरों को अपना शत्रु नहीं मानता। तो कई बार ये प्रश्न उठ सकते हैं कि हम सेवा इकट्ठे करते हैं और एक पूरा सोसाइटी है, हर तरह के लोग हैं, कई लोग सिस्टम का गलत उपयोग करते हैं, बेईमानी करते हैं, कुछ गलत काम करते हैं और हम विनम्र बने रहे, प्रणाम सुनिश्चित चलो करो और वो अपराध ना हो जाए, ठीक है, क्या तरीका है? तो ये हमारी गलत अंडरस्टैंडिंग है विनम्रता की। विनम्रता का अर्थ डिनाइल नहीं है कि करेक्शन ना करें, कुछ जो बोला होने दें, लेकिन अगर हम उस सिस्टम को करेक्ट भी करना चाहते हैं तो वो भी हम विनम्रता से करें, द्वेष ना करें और जो सत्य है उसको स्थापित करें सही तरीके से। नो पॉलिटिक्स, नो एनवी, नथिंग। हम देखेंगे ये श्याम सुंदर युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं तदामि भूते युगंतं तेने आमर्यते। और ये हमारा अंदर से जो इच्छा है, भावना है, तो निश्चित रूप से भगवान हमें बुद्धि प्रदान करते हैं। तो बहुत ही इसमें बहुत कुछ है कहने को, चर्चा करने को, बहुत शिक्षा प्रद ये तात्पर्य है कि हम सब कुछ हमारे पास है और ये प्रोसेस बहुत सिंपल है और इसके रिजल्ट बहुत महान है, बहुत महान। प्रभाव जाते हैं नौ छब्बीस भगवदगीता में क्या करना है, भगवान को भोग लगाना और भगवत धाम चले जाना, बस प्रेम का है। बहुत सिंपल प्रोसेस है लेकिन बहुत इसके रिजल्ट्स बहुत महान है। लेकिन इस सिंपल प्रोसेस को हम बड़े कॉम्प्लिकेट कर देते हैं अपनी कॉम्प्लिकेटेड बुद्धि के कारण, और उस बुद्धि से को हम रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं जो हमने चर्चा की, ध्यानपूर्वक साधना, ध्यानपूर्वक श्रवण, जो श्रवण करें उसको अपने जीवन में अप्लाई करने का प्रयास करें, भक्तों का संग करें, भक्तों की सेवा करें और अपराध करने से बचें। और जैसे ही हमें लगे कि मुझे देखो इससे द्वेष ना है, जब हम किसी भक्त को देखकर अंदर से प्रसन्न नहीं हो रहे, उसको कीर्तन करते हुए देखकर, उसको प्रवचन देते हुए सुनकर, उसकी पूजा करते हुए देखकर, कुछ भी उसको देखकर हम अंदर से प्रसन्न नहीं हो रहे, तो तुरंत घंटी बजाना चाहिए, ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, द्वेष है, इसका मतलब द्वेष है। अभी तक मैंने मुझे किसी से द्वेष नहीं, यही द्वेष है, तुरंत उसको पकड़ो, फिर उसको खत्म कर दो। खत्म करने का क्या तरीका है कि उसको हम जैसे प्रभाव जाते हैं उसको हम मैनेज कर सकते हैं, ये मेरी बाधा भक्ति में बाधा ना डाले, इसको साइड में रखो, धीरे धीरे इसको इग्नोर करते करते हम इसको ओवरकम कर पाएंगे। तो ये खुद को मुस्तैद रहना पड़ेगा, और मदद चाहिए तो मदद लेनी पड़ेगी ईमानदारी के साथ, तब हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, जो मेरा जो मेरी मानसिकता है वो बनी रहे और मैं भगवत धाम चला लू, नहीं, जो हिरण्यकश्यप की मानसिकता है सदा सुमंत्रिं धियम असत कराम, जो टेम्परेरी चीजें हैं उसको पकड़ के रखा हुआ है और इच्छा है कि परमानेंट खुशी मिल जाए, होगा ही नहीं। टेम्परेरी चीजों को छोड़ना पड़ेगा और परमानेंट चीज को पकड़ना होगा, तब हमें परमानेंट हैप्पीनेस मिलेगी। हरे कृष्ण।